ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित कर रहा है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली के कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने की मांग की। डाक विभाग भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से नई दिल्ली में 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा प्रबंध के अंतर्गत आदेश जारी किया। 1 फरवरी तक हैंड ग्लाइडर्स, मानव रहित हवाई विमान, मानव रहित विमान प्रणाली और ड्रोन पर प्रतिबंध रहेगा। और पहले खो खो विश्व चैंपियनशिप का खिताब भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया। पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल से जारी है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है।
हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने की मांग की है, ताकि सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को मकान बनाने में मदद मिल सके। अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उन्होंने जमीन की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, ताकि दिल्ली सरकार उस जमीन पर अपने कर्मचारियों के लिए मकान बना सके।
दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए। दिल्ली में लैंड जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देने का अपना वायदा पूरा नहीं किया है।
कहीं भी 1,000 मिला नहीं और फार्म भराए थे, आज आप 2,500 अनाउंसमेंट कर दी। अगर ये देने वाला होता आज 3 साल तो भाई पंजाब सरकार में हो गए। 36,000 हर मेरी माँ बहन का बनता है। जब ये वोट मांगने जाता है इससे ये पूछा जाना चाहिए, यहाँ तो 5 साल पूरे हो गए।
वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के डोर टू डोर अभियान के दौरान 3 युवकों ने उनसे बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजाब पुलिस ने युवकों के साथ दुर्व्यवहार किया।
ये तीनों स्थानीय युवा जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाही, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी ने टक्कर मारी है। तीनों की टांग में चोट लगी है, अभी उनको एक्सरे के लिए लेकर गए हैं।
इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बढ़ावा देने से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह विफल रही है।
केजरीवाल का आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है। अगर नेशनल लेवल पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विपक्ष के तौर के ऊपर मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता।
आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनकी पार्टी पर बनी फिल्म की निजी स्क्रीनिंग को रुकवाने के मामले में भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि वह इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर लिखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है ओखला विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान की एक रिपोर्ट।
दक्षिण पूर्वी जिले में स्थित ओखला सीट पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अल्पसंख्यक बाहुल्य इस सीट पर पिछले दो बार से विधायक अमानतुल्ला खान पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अरीबा खान और भाजपा ने मनीष चौधरी को चुनावी अखाड़े में उतारा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर पिछले चुनाव में श्री खान ने भाजपा के ब्रह्म सिंह को 71,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। ओखला बर्ड सेंचुरी और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। इस इलाके की ओखला मंडी थोक फल सब्जी समेत कई तरह के घरेलू सामान की बिक्री और खरीद के लिए भी लोकप्रिय है। इस बार इस सीट पर कूड़े की समस्या, टूटी हुई सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइट, बारिश के दौरान जल भराव की समस्या और पेयजल की दिक्कत जैसे मुद्दे यहां के स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का केंद्र हैं। लगभग 3,70,000 मतदाताओं वाली सीट पर 2,00,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 1,60,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। एक तरफ जहां इस सीट को तीसरी बार जीतने के लिए आम आदमी पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के वनवास को खत्म करना चाह रही है।
विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकनों की जांच के बाद कुल 719 नामांकन स्वीकार किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की गई और कल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच नगर निगम ने आज करीब 5,000 होर्डिंग, 20,000 से ज्यादा पोस्टर बैनर और करीब 10,000 राजनीतिक दलों के झंडे हटाए। निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे करीब 1,500 साइन बोर्ड भी हटाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के महत्व पर आज महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्रों ने एक वॉकेथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों और विशेषकर युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा प्रबंध के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है। पुलिस के अनुसार राजधानी में 1 फरवरी तक हैंड ग्लाइडर्स, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, कम हवा के गुब्बारे और ड्रोन प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डाक विभाग भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से नई दिल्ली में 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। यह समारोह राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में होगा। इस दौरान कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, डाक सफारी और पत्र लेखन प्रतिस्पर्धा शामिल होगी। यह आयोजन सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खुला होगा। संचार मंत्रालय ने कहा है कि आयोजन का उद्देश्य संविधान के मूल्यों को प्रदर्शित करना और एकता तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रोत्साहन देना है। खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल पर 78-40 से जीत हासिल कर खो खो विश्व कप चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला भी नेपाल से जारी है। जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक के पास, जो इस समय नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद हैं। अभिषेक, महिला टीम ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जीता चैंपियनशिप खिताब, पुरुषों का क्या चल रहा है?
जी विनय
हेलो, अभिषेक आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी आ रही है।
आप मुझे बताइए, महिला टीम ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन नेपाल ने भी 40 पॉइंट तो ले लिए, तो क्या रहा?
जी विनय, जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारतीय महिला टीम ने नेपाल के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करी जिसमें उनका स्कोर 78-40 था। वहीं महिला टीम के प्रदर्शन की बात करें तो महिला टीम का प्रदर्शन बिल्कुल बहुत शानदार रहा। इस पहले खो खो विश्व कप में वो हर मैच में सभी मैचों में उसने जीत हासिल करी और अपने ओपोनेंट के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करी।
और पुरुषों का क्या चल रहा है, क्या स्कोर है?
जी विनय, अभी पुरुष टीम के बीच में तो शुरू होने वाला है। जैसा आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, यहाँ स्टेडियम में दर्शकों का बहुत जोर है। अब से कुछ ही देर में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल से होने जा रहा है।
धन्यवाद अभिषेक। हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 40 सीटों के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतदान के लिए प्रदेश के 42 जिलों में 406 बूथ बनाए गए थे। यहां 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव परिणाम आने के बाद निर्वाचित सदस्य कमेटी के प्रधान समेत विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पहले से ही आधार के जरिए मान्य है, वे अपना प्रोफाइल जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि को किसी दस्तावेज को अपलोड किए बिना खुद अपडेट कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि संशोधन से लगभग 3,90,000 सदस्यों को तुरंत लाभ मिलेगा, जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में लंबित हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 22 विभिन्न ब्रांड के 56 नए उत्पादों को लॉन्च किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस अवसर पर सुपर बाइक, कार, बस और एम्बुलेंस से लेकर विभिन्न उन्नत वाहन, अत्याधुनिक मोबिलिटी समाधान और नवीनतम घटकों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस वैश्विक एक्सपो का शुभारंभ किया था। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS का सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 5 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एक मंच पर लाया गया, जिससे उन्हें बातचीत करने, सीखने और एकता, शांति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अनुभवों को साझा करने का मौका मिला। सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के 100 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल चिकारा स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा तथा हितधारकों, नागरिकों और सरकार का सड़क सुरक्षा निश्चित करने में उनके योगदान से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सवाल टेलीफोन नंबर 0112342105 पर पूछे जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष में क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित कर रहा है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने की मांग की। डाक विभाग भारतीय संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कल से नई दिल्ली में 3 दिवसीय समारोह आयोजित करेगा। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा प्रबंध के अंतर्गत आदेश जारी किया और पहले खो खो विश्व चैंपियनशिप का खिताब भारतीय महिला टीम ने जीता। इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।